Following is a lecture on Vrindavan Vihar from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, Verses 7 and 8, on the topic of Krishna's sporting pastimes with the cowherd boys. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Haridwar, India, on May 1st, 2000.
उस समय बच्चे चारों ओर से घेर कर ताली बजाते हैं, वो भी नाचते हैं और कहते हैं कि अरे कृष्ण, तुम तो मयूर से बहुत अधिक सुंदर नाचते हो, मयूर क्या नाचेगा, ऐसा वो कहते हैं। तो भगवान उनके साथ नाचते हैं तो कहते हैं, देखिए देखिए ये मयूर नाच रहे हैं और हरिणिया आप पर प्रेम से देख रही हैं और सतस्त कोकिल गढ़ा और मयूरों के झुंड का झुंड, नहीं कोयलों का झुंड आपका स्वागत कर रहा है, को को करके या कृष्ण कृष्ण करके, क्योंकि आप इनके घर में आए। यही तो भक्तों का स्वभाव होता है, यानी सतर्ण निसर्ग। सतर्ण का अर्थ भक्त वैष्णव, यही वैष्णव का स्वभाव होता है। उनके घर में कोई आता है अतिथि तो उसका भी इस तरह से स्वागत करते हैं। जो चीज उनके पास है वो सारा अर्पित कर रहे हैं। हरिणियों के पास वास्तव में बेचारे दीन है, लेकिन उनके पास जो दृष्टि है वह एक बहुत बड़ा धाम है और मंगल होता है। तो आपका मंगल कर रहे हैं, आपका प्रिय कर रहे हैं, उनके पास यही दृष्टिपात है। और कोयल के पास कंठ है, सुक्तैश्च कोकिल गणा, सुक्तैश्च अथवा इसका आकर्षण गोपियों के साथ करना पड़ेगा। हमारे आचार्य गण बहुत ही दक्ष हैं श्रीमद् भागवत समझने में। गोप्य इक्षणेन ते प्रियम कुर्वन्ती और सुक्तैश्च जथा, जैसे गोपियां निरीक्षण द्वारा आपका प्रिय करती हैं और बहुत सुंदर बातें बोलते हैं, जैसे गोपी गीत में बोला है जौर समय, तो वैसे ये कोयल भी बोल रहे हैं और हरिणियां देख रहे हैं। तो हरिणियों का निरीक्षण और कोयल का बोलना, यह सब सुन करके देख करके श्री कृष्ण को श्री गोपी जनों का स्मरण हो रहा है। वास्तव में श्री गोपी जन विरह से बिल्कुल मर रही है दिन के समय, अतः भगवान कम से कम उनका स्मरण करते रहते हैं। किस तरह से दिन बिताती, पलक गिरना उनके लिए कोटि युग जैसा लगता है दर्शन के समय, और जब दर्शन नहीं हो रहा है वन में गए हैं तो उनको कितनी व्याकुलता होती होगी। और वो भी यह स्मरण करके कि हमारे प्रियतम के चरण कमल में कंटक या पत्थर चुभ रहे होंगे, भगवान उनका इस तरह से अगर स्मरण करे क्षण क्षण में तो कौन आश्चर्य है। तो प्रेम के पिपासु हैं श्री कृष्ण, जो उनसे जैसा प्रेम करता है वैसा करते हैं। इसलिए अपने अग्रज के सामने भी गोपी प्रेम के आवेश में भगवान अपने को छिपा नहीं पा रहे हैं, प्रकट हो जा रहा है। यह रस केवल श्रीमद् भागवतम में है। तो स्थान स्थान पर गोपियों के महाभाव का दिग्दर्शन कराते चलते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये तीन लोगों का वर्णन कर रहे हैं। चकार से और भी जो वृंदावन में पशु पक्षी हैं सबका, और सुक्तैश्च वाणी से कोयल आपका स्वागत कर रहे हैं, नृत्य से मयूर और निरीक्षण से हरिणिया। तो इसी प्रकार से वृंदावन में जिसके पास जो धन है, जो विशेषता है, सबके द्वारा आपकी पूजा कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। यान ही सतान निसर्ग, यही सज्जनों का निसर्ग होता है, स्वभाव होता है। धन्य बनऊ कसर, ये वनवासी धन्य, मतलब इस पृथ्वी पर इनका जीवन कृतार्थ है। बताइए वन में रहने वाले मयूर के पास क्या धन है, हरिणियों के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या धन है, क्या गुण है, कुछ नहीं। वन में रहते हैं, घास चरते हैं, और कोयल वृक्ष वृक्ष पर बैठता है, गाता है, लेकिन भगवान आज अपने मुख से धन्य बता रहे हैं तो वनवासियों को, धन्य बनव कसर या निशताम निसर्ग। कभी शहर में रहने वालों की प्रशंसा भगवान नहीं किए होंगे। धन्य बनव कसर, वन ही जिनका वो कह है निवास है, ये धन्य। क्या बाकी छोड़े, उनके पास कौन सा ऐसा धन था जिसे वो कृष्ण को अर्पित नहीं किए। इसलिए भगवान आज धन्य बोल रहे हैं, धन्य है। यदि उस भगवान के नित्य परिकर हैं और कृष्ण का ही सब कुछ दिया गया है और कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपने परिकरों की सेवा से इतना कृतज्ञ हैं कि वे इस तरह बोल रहे हैं। क्षण क्षण में धन्य वनवासी, धन्य धन्य बनो यानी शताम निसर्ग। भगवान इस तरह से कह रहे हैं, इक्षणेन प्रसन्न नेत्र दृष्ट्या प्रियं प्रीति भावं वा ते तव जनयन्ति। दृष्टि सौंदर्यतः वा किंवा श्री गोपिका स्मरणात्। क्या प्रिय कर रही हैं हरिणिया, इस पर श्रीपा सनातन गोस्वामी भगवान की बातों की व्याख्या कर रहे हैं। इक्षणेन प्रसन्न नेत्र दृष्ट्या, प्रसन्न नेत्र से देखना, इससे भगवान को अच्छा लग रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं। अथवा श्री गोपिका स्मरणत्, श्री गोपिकाओं का स्मरण करा रहा है, हरिणियों का दृष्टि से देखना, निरीक्षण करना, यह भगवान को प्रिय है। एवं अग्रे भी ये बात आगे भी लेनी चाहिए, जिस समय वो कहेंगे भुजे वरण करेल आगे वाला श्लोक में, तो श्रीपा सनातन गोस्वामी यही कह रहे हैं, एवं अग्रे भी बाद में भी ऐसा ही भाव लेना चाहिए। सुक्त ही मधुर स्त्रोत्र विशेष सदृश ही तम स्वमय तत्कृत गृहमागता अभ्यागत से प्रीत तम प्रति निज निजोत्तम द्रव्य समर्पणोपपत्ते। गृहमागता अपने घर में वे आए हैं, तो ये वनवासी मान रहे हैं कि वृंदावन हमारा घर है, गृह है, और हमारे गृह में कृष्ण आए हैं, तो निज निज उत्तम द्रव्य समर्पण पत्ते, अपने पास जो भी उत्तम से उत्तम वस्तु है उसे समर्पित कर रहे हैं। जदवत्ते तव गृहम प्रत्यागता है, या आप अपने घर में आए हैं और आपके घर में रहने वाले ये नित्य सेवक हैं तो आपका स्वागत कर रहे हैं। स्वस्व गृहे तव गमनार्थम इत्यर्थ, अथवा ये जो आपका स्वागत कर रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं अपने अपने घर में आपको निमंत्रण दे रहे हैं। सारा सारा वन तो एक व्यक्ति का घर नहीं है, वनवासी भी कुछ बटे रहते हैं, इधर हरिणिया रहती है चाहे मयूर उधर रहते हैं, तो अपने अपने घर में तव आगमनार्थम आपको बुलाने के लिए आपका स्वागत करते हैं। अतः एता गोप्यो भवन्तु इति वरोगी, अतः गोपी बने यह भगवान वर दे रहे। इसी पर सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान वर दे रहे हैं, स्वागत क्या स्वीकार कर रहे हैं, वर दे रहे हैं। और भगवान के अधिकार में है किसी को गोपी बनाना या अपनी नित्य लीला में किसी को लेना, ये वर है। स्वभाव निरीक्षण स्त्रित्व, तो हरिणिया कैसे गोपी बनेंगी, क्योंकि स्वभाव से देखती हैं और स्त्री हैं। जब गोप्य इव इति सर्वत्र इव दृष्टांत, अथवा गोप्य इव, ये सब जगह दृष्टांत बैठेगा, केवल हरिणियों के लिए नहीं। तो नृत्यम तमी, ये मयूर या मयूरियां ऐसे नाच रहे हैं जैसे गोपियां नाचती हैं, वहां से भी लेना पड़ेगा। ये सर्वत्र दृष्टांत है। यह सुक्त कोकिल गड़ा, कोकिल ऐसे बोलते हैं जैसे कोकिल बदनी गोपियां बोलती हैं, उनकी बोली कोयल से भी अधिक सुंदर। तो श्रीपा सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सर्वत्र वो दृष्टांत, एवं तासाम तत्त अखिल संपत्ति सर्वेभ्य अत्यभ्य वैशिष्ट मयूरादी नाम च परम नेता दिशु एवं सौष्ठ सूचित। इस प्रकार श्री गोपी जनों के अखिल संपत्ति का वर्णन करके सबसे श्रेष्ठ सूचित कर रहे हैं भगवान, क्योंकि मयूर के पास केवल नृत्य है, कोयल के पास कंठ है और हरिणियों के पास सुंदर अवलोकन है, लेकिन श्री गोपी जन में सब है। प्रेम नृत्य है और मधुर कंठ है, स्वर है और प्रेम पूर्वक देखने सब, इसलिए गोपियां परम धन्य है। जब इनके विशेषता के कारण वनवासी धन्य है तो समस्त विशेषताओं से युक्त होने के कारण गोपी जन क्यों नहीं धन्य अति धन्य है, ये भाव है कहने का। गोपिया युवा सब जगह लगा करके अर्थ कर रहे हैं। मयूरादी नाम जो परम नृत्यादि सौष्ठव सूचित, मयूर आदि का तो केवल नृत्यादि एक ही बातों में सौष्ठव सूचित किया गया है। ततश्च सदा तत् प्रियत हस गीत विशेष गायता भवंतु इति वरः, ये सदा आपके प्रिय रहस्य गीत गायक बने, आप जहां रहे गाते रहे नाचते रहे आपका बने यह वर है। धन्य परम भाग्यवंत ऐसा एतद उपयुक्त में वह इत्यादि न, इनके लिए उपयुक्त ही है, क्योंकि ईयान ही सताम निसर्ग ईयान ही जत, क्योंकि स्वभाव स्वभावता ऐसा परम साधुत्वादि भाव या निशतम निसर्ग, ये कोई बहुत प्रयास करके या श्रवण कीर्तन करके आपके प्रति भाव प्राप्त नहीं किए, स्वभाव है यही भक्तों का, ये वैष्णवों का इनका स्वभाव है, स्वभाव बस नाच रहे हैं और आपको समर्पित कर रहे हैं। ये दूसरे के उपदेश से कृष्ण का भजन करना सेवा करना एक और बात है और अपने स्वभाव में आ जाए कृष्ण की सेवा करना एक दूसरी बात है, तो इनके लिए ठीक है, क्योंकि ये सज्जन है साधु शिरोमणि जगह धन्य परम प्रेम धन युक्त है, अथवा धन्य का अर्थ है कि इनके पास परम प्रेम धन है, जिसके पास धन हो वो धन्य, इनके पास आपका परम प्रेम है इसलिए ये धन्य है, अथवा परम प्रेम धन युक्त भवंतु इति वृंदावन्यान सर्वान्य प्रत्ययम वर, वृंदावन के समस्त जीवन को भगवान यह वर दे रहे हैं कि परम धन से युक्त परम प्रेम धन से युक्त ही जस्मात सताम प्रेम भक्ता नाम एवं ईयान स्वभाव भवति इति भाव, क्योंकि प्रेमी भक्तों का ही ऐसा स्वभाव होता है, अतः भगवान एक प्रकार से वर दे रहे हैं। गिनते जाएगा, पहले वृक्षों के को धन्यवाद दिया, इसके बाद एक श्लोक में पूर्ण रूप से भावरों को और तीसरे श्लोक में मयूर हरिणिया और कोयल और चकार से अनुक्त समुच्चय, जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है च से सब को कह रहे हैं, जिसके पास जो भी विशेषता है वो कह दिया भगवान ने, यह भक्तों के लिए छूट दे रहे हैं भगवान के, अब आप नित्य लीला चिंतन करें या मानसिक चिंतन करें और सोचा करें कैसे और लोग नाचे होंगे गाए होंगे कृष्ण का किस प्रकार स्वागत किए होंगे, जो सभी कृष्ण के पास आते हैं। अच्छा, अब सामान्य रूप से सबकी धन्यता का निरूपण कर रहे हैं, सबसे पहले पृथ्वी की ओर दृष्टि डालकर भगवान कहते हैं धन्य यमद्य धरणी त्रिवीर भस्त्र पाद स्पृशो द्रुमलता कनजा विमृष्टा नद्यो द्रय खग मृगा सदयावलोक गोप्यं तन्मेव भुजयो रतुज स्पृहाश्रिः अयम भरणि अद्य धन्य, आज यह पृथ्वी धन्य है, मथुरा वर्तिनी या ब्रजमंडल की यह भूमि आज धन्य, अथवा ब्रज इस भूमि पर पर स्थित है, इसलिए सारी धरणी धन्य। आप दे शब्द लगाकर कह रहे हैं पहले से ही धन है, लेकिन वास्तव में आज यह धन्य हुई है। क्यों? तो पाद स्पृश, आपके चरण का स्पर्श पाकर के आज यह धरती धन्य हो गई, धन्य हो गई। और इसके साथ ही साथ तृण विरुद्ध, तृण विरुद्ध, बिरवाई, भोजपुरी में बिरवाई कहते हैं, इसी विरुद्ध शब्द का अनुवाद है, जो जमीन पर फैलते हैं। तो जमीन पर फैलने वाले तृण लता आदि धन्य है। क्यों? तत्पाद स्पृश, आपके चरण कमल का स्पर्श में प्राप्त होता है। तो चरण कमल के स्पर्श से पृथ्वी धन्य है, त्री और विरुद्ध धन्य है, ध्रुव लता है, कर्जा भी मृष्टा, और इस ब्रज के ध्रुव और लता, वृक्ष और लताएं धन्य है। क्यों? क्योंकि इनको आपके मखों का स्पर्श प्राप्त होता है। करज, कर में जो जन्म मिले उसको करज कर, हाथ में जन्मते रहते हैं नख और आदमी काटता रहता है, जो करज कहते हैं। करात जन्म जस्य स करज, तो कर्जे ना नखे ना ध्रुव लता धन्य, हाथ का स्पर्श पाकर ध्रुव लता धन्य हो गए, चरण का स्पर्श पाकर विरुद्ध तृण लता दी और भूमि धन्य हो गई, और नद्यो प्रय खग मृगा सदयाव लोक है, और आपके स्नेह भरी दृष्टिपात से नदी, नदियां, नद्य और अद्रय पर्वत समूह, गिराज इत्यादि, और खग मृगा और खग पक्षी और मृग धन्य हो गए। तो सदयावलोक से, दया सहित अवलोकन से ये सब धन्य हो गए। दूरवर्ती हैं इसलिए दृष्टिपात द्वारा धन्य करते हैं। यदि कभी कभी भगवान जाते हैं सब जगह, उनको भी चरण का स्पर्श मिलता है, जिसमें अद्रय अपमुख है, गिरिराज पर भगवान घूमते हैं, तो उनको ही अरण्य पर्वतों को चरण स्पर्श सुलभ है, नख का भी स्पर्श सुलभ, कभी सोते हैं पत्थर पर, कभी बैठते हैं, सर्वांग का संस्पर्श सुलभ है। परंतु सब समय थोड़ी सी दूरी का ध्यान करके भगवान दिखाकर कह रहे हैं ये सब पर्वत, वन, खग, मृग सब धन्य है आपके स्नेह भरी दृष्टिपात। और गोपियों तरह भुजन रजत श्रीयाश्री, और गोपियां धन्य है आपके दोनों भुजा के अंतर से, पक्षस्थल से। आप जब गोपियों का आलिंगन करते हैं तो आपके आलिंगन से गोपियां धन्य है, जिस आलिंगन की स्प्रिया श्री भी करती है पर उन्हें सुलभ नहीं हुआ। महालक्ष्मी जी आज तक तप कर रही हैं भगवान का स्पर्श पाने के लिए, चरण रज का स्पर्श पाने के लिए, और उनको नहीं मिला। देखिए, विचार कीजिए भगवान का आवेश श्री गोपियों में। तो आपके चरण स्पर्श पृथ्वी धन्य है, ये तीन और विरुद्ध धन्य है, और आपके मख स्पर्श से वृक्ष और लताएं धन्य है, स्नेह भरी दृष्टि से खग मृग नदी पर्वत सब धन्य है, और आपके वक्षस्थल से गोपियां धन्य है। इससे स्पष्ट हुआ कि भगवान का नित्य विहार और गोपीजनों के साथ संस्पर्श और नाना प्रकार की लीलाएं चलती ही रहती थी। गोपियों के साथ भगवान नित्य किशोर है, और बच्चों के साथ, सखाओं के साथ पौगंड अवस्था में, यही तो भगवान की भगवत्ता है। तो ये गोपियों का भाव, गोपियों का स्मरण यदि भगवान के हृदय पर पूर्ण अधिकार नहीं किए हुए होता है, तो श्री बलराम जी के सामने भगवान इतना खुल करके नहीं बोल पाते जैसा बोल रहे हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में धन्य है तो श्री कृष्ण के अंगों के साथ संबंध के कारण, वो चाहे दृष्टि पड़ी हो उस पर, या चरण का स्पर्श हुआ हो, या नख का स्पर्श हुआ हो, कुछ भी, जिसका जितना भगवान के अंग से संबंध है वह उतना ही धन्य। धन्य ये मध्य धर्म तीर्ण विरुद्धस्त, इसको ठीक है। विशेष तो महात्म्यम अभिवर्ण पुनर्हर्ष भरे न सामान्यतः सर्वेशा अभिवर्ण थी। जो तत्काल में हृदय में धसे हुए थे देख देख करके वृंदावन में, तो उनका विशेष वर्णन किए। मयूर सामने आ रहे थे, कोकिल गा रहे थे कुहू कुहू समय, और हरिणिया सामने आ रही थी, भौरे साथ में थे और वृक्षों से वे गुजर ही रहे थे, इसलिए इनको हृदय तमाना, भगवान के हृदय में ये धस रहे थे, इसलिए सबसे पहले इनकी महिमा का वर्णन किया। लेकिन अब सामान्यतः सर्वेशा में भी बढ़ रहे थे, सामान्य रूप से सबकी प्रशंसा कर रहे हैं। जदवा किम विशेष वर्णन न सर्व अत्रत्य धन्य धन्य, अथवा एक भाव है कि मैं क्या विशेष वर्णन करूं हे प्रभु, हे हमारे अग्रज, इस वृंदावन की समस्त वस्तु सर्वत्र सब वस्तुएं सभी जीव धन्य धन्य है। इयम पृथ्वी के लिए इयम शब्द दे रहे, इयम स्त्रीलिंग एक वचन, इयम धरणी धन्य, कदा धन्याभूत अद्य, अद्य अर्थ अधुना, श्रीपाल सनातन गोस्वामी लिखते हैं इयम आदितो वर्तमान विचित्र अवतार भूषिता, यह पृथ्वी तो बहुत काल से है, अनादि काल से है और आपके विचित्र विचित्र अवतारों द्वारा यह अलंकृत हुई है, सारे अवतार इस पृथ्वी पर हुए, आपने बारंबार अवतार समूह लेकर इस पृथ्वी को धन्य किया है। और यहां तक कि श्री बराहे उद्धृत्य रमिता, श्री बारा के रूप में आपने अपने दंतों पर इसको धारण किया है, इसको सुखी किया है, और शेष रूपेण त्वया शिरसि धार्यमानायति, और शेष रूप से आप इसको सिर पर धारण करते हैं, फिर भी अद्य श्री मथुरायम अवतीर्णे त्वयि, लेकिन आज यह धन्य हुई है जब आप मथुरा में अवतार लिए, इस मथुरा मंडल में जब आप आए हैं तो आज यह पृथ्वी धन्य हुई है। पहले से ही कुछ कुछ धन्य थे लेकिन परम धन्य आज हुई है, कहने का भाव ये। किमत श्री नंद ब्रज पौरंड लीलय गोपाल सत्यव धन्य परम भाग्यवती सर्वोत्तम आभूत, अथवा श्री नंद ब्रज में नंद गांव में पौरंड लीला द्वारा जब आप गोपाल बने हुए हैं तब यह परम भाग्यवती हुई है। नहीं तो बारह रूप से दांत पर टांगने से या सिर पर उठाने से धन्य नहीं हुई है, सिर पर उठाने से पृथ्वी धन्य नहीं हुई भगवान के, दांत से पकड़ने पर धन्य नहीं हुई, जबकि दांत से पृथ्वी को पकड़ना बहुत मैकट्टे का सूचक, बहुत निकटता सिद्ध हो रही है, एक प्रकार से भगवान चुंबन कर रहे हैं पृथ्वी का, लेकिन जब पैर से छुए तब पृथ्वी धन्य, पहले शायद पैर से नहीं छुए, जो सीट पर दांत पर रखते तो पैर से क्या छुए। और वह भी भयंकर भयंकर रूप से, और जब नंद ब्रज ने इतना परम सुंदर रूप प्रकाशित करके और इसका स्पर्श किए हैं, इस पर सोए हैं खेले हैं खाए, तब यह धन्य हो गए। इयम अच्छा, इयम का अर्थ है ब्रजवर्तिनी भूमि, 84 कोस में यह जो भूमि है यह धन्य है, और इसके संबंध से यम धरणी संपूर्ण पृथ्वी धन्य हुई। अद्ययति सर्वत्राग्र अपि वयम वर्त्यम, जो अद्य शब्द आज यह पृथ्वी धन्य हुई है तो इस सब जगह ले जाना पड़ेगा अद्य को, आज ये वृक्ष लता धन्य हुए हैं, आज धन्य है, नहीं तो आप तो ब्रज में रहते थे और कल्पना करते थे कि कब चलेंगे कि राज्य में और कब वृंदावन में घूमे, आपको गोचारण की अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन आज धन्य हो गया। सर्वत्र प्रचार द्वारा, सर्वत्र घूमने द्वारा आपके दृष्टिपात आदि से सब धन्य है। अथवा एक भाव यदि अभी लगता है कि श्री कृष्ण सब जगह नहीं घूमे हैं, ये प्रथम दिन की लीला है, इसलिए दूर के पर्वतों को देख करके कहते हैं, नदियों को, ही आपके दृष्टिपात से धन्य है, बाद में आपके चरण स्पर्श आदि से धन्य होंगे, अभी दृष्टिपात से धन्य है। तो अद्य सर्वत्र अग्र अपि एवं अनुवर्त्यम् धन्यायमित्यपि वचनादि व्यत्ययेन। पृथ्वी के धन्य कहा गया है, आगे आप देखेंगे बहुवचन आएंगे और कुछ पुल्लिंग भी आएंगे, तो वचन व्यत्यय से सब जगह धन्य या धन्य या धन्य ऐसा लगा लेना चाहिए। प्रथम बार पृथ्वी के लिए धन्य कह रहे हैं तो वचन व्यत्यय से और सब जगह धन्य लगा लेना चाहिए, और सब जगह धन्य शब्द नहीं आया, पृथ्वी के लिए धन्य शब्द आ गया एक बार, लेकिन और सबको धन्य बना रहे हैं। वचन व्यत्यय से उसको समझ लेना चाहिए। धन्य इयम इति अपि वचनादि व्यत्ययेन तथा त्वदिति समासंत परिष्टम अपि यथा स्थानम आकर्षणीय यद्यपि त्वत् पदस्पृश क्या है शब्द इसमें त्वत् पदस्पृश तो त्वत् पाद यद्यपि समासांत शब्द है, समास जुड़ा हुआ है पैर के साथ, लेकिन इस त्वत् शब्द को और जगह मिले जाना पड़ेगा। त्वत् सदयावलोक त्वत् कर्जा विमृष्ट त्वत् को और सब जगह आकर्षणीय इस स्थान से खींच खींच करके सब जगह लगाना पड़ेगा। आपके चरण स्पर्श से पृथ्वी धन्य हुई है, लेकिन और जगह आपके सदयावलोक शब्द का प्रयोग नहीं है, तो यहां से त्वत् ले जाना पड़ेगा। वहां आपके सदयावलोक से आपके कर्जा विमृष्ट से और सब धन्य, तो त्वत् इति यथा स्थानम आकर्षणीय इमानी त्रिनानी। इसका अर्थ यह है इमानी त्रिनानी इमा विरुद्धश्च गुणिन्यो धन्य न च स्वर्गादिवर्तिन्यो दंडकादि स्थिताश्च। और इमा शब्द पर जो भगवान कर रहे हैं, जैसे इम धरती के लिए लगाए तो और सब जगह वचन व्यत्यय से लगाना पड़ेगा। इमानी त्रिनानी धन्य धन्यानी, ये त्रिण धन्य है, सब जगह तृण है, सारी दुनिया में और स्वर्ग आदि में भी तृण है, लेकिन भगवान जो इमानी शब्द कहेंगे ये तृण धन्य है। न च स्वर्गादिवर्तिन्य, स्वर्ग आदि में जन्म लिए हुए तृण लतादि धन्य नहीं है, और न च दंडकादि स्थित दंडक वध या पंचवटी आदि की लता धन्य है, लेकिन उतना धन्य नहीं है जितना वृंदावन का। इमानी शब्द से व्यक्त हो रहा है। तत्र हेतु, इसका कारण क्या है, क्यों पृथ्वी धन्य है और क्यों त्रिण लता गुणवादी धन्य है। तत्र हेतु तदपादस्पृश एवं अग्नि पेय अपि व्याख्ये धरण्या धन्यत्वेपि अयमेव वा हेतु। धरणी धन्य है इसमें भी हेतु चरण स्पर्श इति द्रष्टव्य। असाधारण सुंदर पदई गुष्ठ्या दरुक्षण प्रदेश से उदित ही अलंकार विशेष संपत्ति। गोष्ठ में या वन में सर्वत्र आपके सुंदर चरण कमल उभरे हुए हैं, इसलिए आज यह पृथ्वी धन्य हुई है। ये तो जब केवल गोकुल में खेलते थे और वो भी साफ चरण, बचपन में तो साफ चरण भरता ही नहीं था, जाहिर और घुटना से चलते थे, या हो सकता है कि ब्रज में मां जशोदा इनको जूता पहना करके भेजती होगी। जैसे आजकल के लोग अपने बच्चों को मोटा मोटा स्वेटर क्या क्या लगा देते हैं, हवा भी नहीं लग पाती, मोजा टोपी। हो सकता है कि मां उनको भी मोजा पहना देती होगी, इसलिए चरण उभरता नहीं होगा। बच्चा है इसलिए चरण छिन्न भी तो बच्चा है, वो साफ साफ उभरते रहे पृथ्वी पर, लेकिन अब सब कुछ क्लियर उभर रहा है, इसलिए पृथ्वी आज धन्य हुई है चरण चिन्हों से अलंकृत होकर। द्रुमा लताश्च फल पुष्पादि ग्रहणेन, और ध्रुव वृक्ष और लता क्यों धन्य है, क्योंकि आपने उनके फल और पुष्प आदि को ग्रहण किया, स्वीकार किया। चरण चिन्ह से पृथ्वी धन्य हुई और फल पुष्प आदि ग्रहण से ध्रुव और लता भूषणाद्यर्थम पत्रादि छेदनेन च नख स्पृष्ट, और आपके नख स्पर्श से धन्य हुए, क्यों, एक तो फल फूल आदि आपने लिया, दूसरा अपना श्रृंगार करने के लिए पत्ता आदि तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, तो आपके मख का स्पर्श पाकर के लताएं और वृक्ष धन्य होते। नद्य श्री जमुनाद्य, यहां नदियां बहुवचन में, उसका अर्थ है श्री जमुना जी आदि। अद्वय श्री गोवर्धना गोवर्धनादय, खगा मयूरादय, मृगा कृष्ण सारादय, दूरस्थिता सदय सदय अवलोकन धन्य, जो दूर है वे दृष्टिपात से धन्य है। नद्यद्रीणाम पदार्ज स्पर्श धन्यता सद्भाव अभी तथोक्ति प्राय दूरवर्ती पर, नदी और पर्वत आदि को भगवान के चरण स्पर्श, भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त है, लेकिन फिर भी तत्काल में दूर दिखाई दे रहा है, इसीलिए भगवान कहते हैं सदय अवलोक है प्राय दूरवर्ती पर। तथा धरण्यादिषु सर्वेशु सदय अवलोक संभव अभी, और पृथ्वी पर भी तो सदय अवलोक कर ही रहे हैं, केवल केवल पाद स्पर्श नहीं कर, नख स्पर्श भी है, कभी सोते भी हैं, जैसा वर्णन आएगा इसमें, कल वर्णन आएगा भगवान सज्जा पर सोते हैं और गोप सखा चरण दबाते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई पंखा झलते हैं, तो सर्वांग का स्पर्श पृथ्वी को प्राप्त है, और चलते हैं तो अपने नेत्र कमल से धरती पर देख करके ही तो चलते हैं, लेकिन पृथ्वी की धन्यता जो कही गई तो चरण स्पर्श से, तो प्राधान्य विवक्ष है, और सब कुछ सुलभ है पृथ्वी को, लेकिन प्रधान पृथ्वी का सौभाग्य है चरण का स्पर्श। और इसी तरह से और वृक्षों पर भी चढ़ते हैं तो चरण का स्पर्श होता है, सर्वांग से भगवान वृक्ष की शाखा को पकड़ते हैं, वक्षस्थल का भी स्पर्श होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जब फल फूल ग्रहण करते हैं और अपने नख से अपने श्रृंगार के लिए तोड़ते हैं तो यह प्रधान सौभाग्य है वृक्षों का। इसलिए जो प्रधान सौभाग्य है उसको कह रहे हैं, अन्यथा सबका सब प्रकार से सौभाग्य, ऐसा नहीं किसी को चरण स्पर्श केवल सुलभ है, किसी को दृष्टिपात केवल सुलभ है, किसी को नख स्पर्श सुलभ है, नहीं सबको सब है, लेकिन सीता सनातन गोस्वामी कहते हैं प्राधान्यापेक्षया तथा धरण्या विषु सर्वेशु सदया अवलोक संभव्य अपि तथा दिमादिषु अपि यथायथम पाद स्पर्श आदि संभव्य अपि तेषु तेषु तत्त्व प्राधान्य अपेक्षा तथा सौभाग्य में जो कारण प्रधान है उसी को लिख दिया गया है, बाकी सब प्रकार से सौभाग्य समझना चाहिए, एवं अग्रे अपि, यही बात आगे भी आएगी, आगे जब भी वर्णन आएगा तो यह सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि सबको सब प्रकार का सौभाग्य प्राप्त। इमा श्री नंद ब्रज व्रत वर्तिन्य किंवा सदा हृदवर्तित्व न अपरोक्षा, इमा इमा जो श्लोक के अंत में आया है, नद्योद्रय खग मृगा सदयावलोक इमा, इमा का अर्थ है सदा हृदय वर्ती, भगवान के हृदय में जो वस्तुएं हैं तो उसको इमा कह रहे हैं, वो लेना पड़ेगा, इसमें नहीं है लेकिन और जगह से इसको लेना पड़ेगा, इमा भुजयो अंतरेण आलिंग लेना वक्षसा इत्यर्थ, भुजयो आलिंग लेना वक्षसा इत्यर्थ, अन्यतर व्याख्या तुम जब अपि शब्द समुच्चय, अपि शब्द भुजयो अपि, अपि शब्द है कि जैसे गोपियां आपके वक्षस्थल के स्पर्श धन्य है, तो अपि शब्द समुच्चय का अर्थ है आपके नख स्पर्श से, आपके वक्षस्थल के स्पर्श से, आपके चरण के स्पर्श से, सब तरह से गोपियां धन्य, अपि शब्द समुच्चय अर्थ में, भुजयो अंतरेण सदयावलोकाधीश्च तासु धन्यता काराणाम पादस्पर्श नखादीनाम सर्वेषाम अपि प्राधान्यना सद्भावादिति तासाम सर्वतो अधिकतर धन्यतोक्ता, जो वृक्षों को लताओं को पृथ्वी को एक एक अंग से परम धन्यता निरूपण कर रहे हैं। गोपी जनों को सर्वांग सुलभ है भगवान का, इसीलिए उनकी उनके विषय में परम धन्यता उगता है। अर्थ श्री वैकुंठे सस्य वक्षसी नित्यम एवं वसंती लक्ष्मी त्वद वक्षस एवं स्प्रियति इति असंगतम एवं। एक प्रश्न होता है कि श्री वैकुंठ नाथ के वक्षस्थल पर नित्य विहार करने वाली लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल की स्प्रिया करें तो असंगत है। श्री तप चक तीन अयम अर्थ, इसलिए यहां ये अर्थ है। कृष्ण से स्मर्धम माधुर्य भरम अवेक्ष तस्मय स्पृहयंती श्री तपस्कार। यद्यपि महालक्ष्मी जी भगवान नारायण के वक्षस्थल पर नित्य रहती हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण रूप में अधिक मधुर हैं, अधिक रसिक हैं, तो इनके चरण रज की मैं स्प्रिया करने के लिए करती हैं और तप कर रही हैं। जदवन छया श्री भरना चरण तपो इति नागपत्नी भी वक्षत। यह बात नागपत्नियों के मुख से कही जाएगी आगे चल। लक्ष्मी जी चरण रज की अभिलाषा कर अत्र स्त्रियों अपि अधिक महात्म्य ब्रज सुंदरी नाम सुव्यक्तम एव। तो स्पष्ट हो गया कि श्री से भी लक्ष्मी जैसे भी अधिक सौभाग्य ब्रज गोपियों का है, सुव्यक्त हो गया, तो पूरा पूरा व्यक्त हो गया। जिस वक्षस्थल से गोपियां धन्य है, प्रतिदिन प्रति रजनी भगवान के साथ नृत्य करती हैं, आलिंगन प्राप्त होता है श्री कृष्ण का, और उस आलिंगन की लक्ष्मी जी स्प्रिया कर रहे। श्री जत स्प्रिया स्प्रियावती तीसरे स्प्रियावती, तो गोपियां परम धन्य। बारंबार गोपियों की उक्ति आ रही है, इस पर हरिश्री जी जो श्लोक लिखे हैं वो इस प्रकार का है। अध्यास हो जस्य जस्मिन मनसी दृढ़तरो वर्तते वस्तु जाते तद वक्ता तद विनिर्यात्यवस समय भूमि संस्कार योगा एवं गोपी गतात्मा सही विभुरवदत गोपिका धन्य तोक्ति नो चेदुदिश्य रामम विपिन गतनुतौता दृगुप्त्य अपशक्ति। ये उसमें भी है, उसमें हरिश्री जी का है दिया गया। अध्यासो जस जस्मिन मनसी वृढ़तरु वर्तते वस्तु जाते, जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में दृढ़ अभ्यास आवेश रहता है, तद वक्त्रा विनिर्याति अवस समय, अवस समय में उसके मुख से वो बात निकल जाती है। केवल भूरी संस्कार योगात, जो बहुत बहुत संस्कार जमा हुआ है हृदय में, तो वह बात मुख से निकल जाती है। एवं गोपी गतात्मा सही विभुर अगत अवदत गोपिका धन्य तोक्ति, गोपियों में जिनका मन आविष्ट है वे प्रभु गोपियों को धन्य बता रहे हैं, और वो भी अपने वक्षस्थल के स्पर्श से। यदि यह सिद्धांत नहीं होता कि भूरी संस्कार जोर से ही मनुष्य कुछ बोल देता है, तो वन में वनवासियों की प्रशंसा करते समय भगवान अपने बड़े भाई से गोपियों की धन्यता का निरूपण कैसे कर सकते थे। कोई प्रसंग होता और स्त्रियों का यदि वर्णन किए होते तो चलो गोपियों का वर्णन कर देते, इन वनवासी जीवों का वर्णन कर रहे हैं और उसी संदर्भ में अपने बड़े भाई से गोपियों की धन्यता बता रहे। तो सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण गोपी गतात्मा है, उनका मन गोपियों में बसा हुआ है, नहीं तो बार बार क्यों गोपी की चर्चा आ रही है। तो यही है भगवान का प्रेम वशित्व स्तुल, प्रेम के वश में गोपियां जब दिन रात केवल कृष्ण के लिए विकल हैं, तो कृष्ण भी गोपीजनों के लिए विकल, इसे असिद्ध हुआ। इस प्रकार स्थान स्थान पर गोपियों की धन्यता उक्त हुई है। तो प्रतिदिन की अलीला है, लेकिन एक दिन वर्णन करके अन्य दिन के समझने के लिए कह दिया गया, इसको अन्य दिनात दशार्थम कहते हैं, अति दशार्थम, अन्य दिन भी इसी प्रकार से नए नए ढंग से प्रवेश करते थे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा
Sanam